अगली टिप लीजिए, जो गुजर गया सो गुजर गया, लेट इट गो, लिव एंड लेट टू लिव। पिछली जिंदगी में माजी के दरीचों में मत झांकिए। अब देखिए, गाड़ी में फ्रंट मिरर बहुत बड़ा होता है, जिसमें से ड्राइवर देखता है, विंड स्क्रीन भी कहते हैं, जबकि एक बैक मिरर होता है, रियर मिरर भी कहते हैं, कितना छोटा सा होता है। बस वो मिसाल इसके कोड में लिख लीजिए। गाड़ी में जो हैसियत बैक मिरर की है ना, जो बिल्कुल छोटा सा, 1 फुट से भी छोटा होता है, बस वो है माजी की, और आगे मुस्तकबिल जो आ रहा है वो है विंड स्क्रीन। तो जो गुजर गया सो गुजर गया, माजी में जीना, इसके गमों और अलमियों को याद करते रहना और इन पर रंज करना बेवकूफ़ी और हमाकत है। याद रखिए, इस इरादे बोझल हो जाते हैं, मुसहमिल हो जाते हैं, और मौजूदा जिंदगी गंदी और बोझल यानी मकदर हो जाती है। अकलमंद लोग यानी हुक्मां कहते हैं कि माजी की फाइल लपेट कर रख दी जाए, इसे खोला ना जाना चाहिए, बल्कि हमेशा के लिए भुला देना चाहिए, इसे किसी दरबे में डालकर बंद कर दिया जाए, क्योंकि जो गुजर गया सो गुजर गया, ना इसकी याद इसे लौटाएगी, ना कोई गम ना रंजो फिक्र इसे जिंदा कर सकती है। जी, क्योंकि माजी का मतलब क्या है? देखिए, माजा यमीज़ उमैज़न होता है, आज ये भी समझ के जाइएगा। एक होता है माजी, एक होता है हाल, एक होता है मुदारे। अभी हम तीनों चीज़ें पढ़ने लगे हैं आगे जाकर। माजी का मतलब है अदम, गुजर गया। माजी परस्ती के मरस में मुबतला मत रहिए, गुजर गया। मदद का लफ्ज़ कुरान में आता है, मदद सुन्नतुल अव्वलीन, वो ता मुअन्नस की है, मदद है। जिन स्टूडेंट को समझ आ गए वो तो खुश हो गए होंगे कि आज पता चल गया ये मदद क्या है। तो माजी में जीना माजी परस्ती है, उसको पूजना है। जो छूट गया उसकी परछाइयों से पीछा छुड़ाइए, एक ख्वाब था दिखाया गया गुजर गया। माजी के हादसात को बस ये जुमला दीजिए, एक ख्वाब था सो गुजर गया, सो गुजर गया। क्योंकि आप दरिया को असल की तरफ और सूरज को मतले की तरफ और बच्चे को माँ के पेट में और दूध को छाती में और आंसू को आंख में वापस कभी नहीं ला सकते। अभी रिवीजन में कुछ लफ्ज़ बोलेंगे, दोबारा समझेंगे आप। कोई किसी चीज़ को उसके बैग पे नहीं ले जा सकता। आप वापस जा सकते हैं बचपन की तरफ, अपने आप को ले जा सकते हैं। तो याद रखिए, इसी तरह माजी के साए में रहना, इसे याद करते रहना, इसकी आग में जलना, एक अफसोसनाक और अलमनाक और मरूब कुन बात है। बड़ा मज़ा आता है लोगों को माजी में जीने का। माजी की किताब पढ़ने से हाजिर की बर्बादी होगी और वक्त का जिया होगा। तो एक टाइम वेस्टर लिख लीजिए, माजी की किताब पढ़ते रहना। देखिए कितना ना समझ है, तो 3 दिन पुराना अखबार पढ़ रहा है, और हमेशा कहता है मुझे पुराने अखबार ही ला दो, वो सस्ते मिलते हैं। तो क्या फ़ायदा उन खबरों का जो पुरानी हो क्या बदल ही चुकी। कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे ही करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में गुज़श्ता अक़वाम का और उनके कामों का तذکرہ किया है, और क्या कहा, वो एक कौम थी जो गुज़र चुकी। जी, तिल्का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। अगर आप जान गए ना कि किसी पारे का आखिरी हिस्सा है, तो बस मेरा दिल खिल गया आपके स्टूडेंट होने पे माशाल्लाह। देखिए, दुआ कीजिए कुरान से ऐसा ताल्लुक जुड़ जाए कि एक लफ्ज़ सुनते ही सब याद आ जाए। दूसरे पारे की आखिरी आयत है, मैं खुद ही बता दूं, पहला दिन है तो मैं परेशान नहीं करती आपको, आगे जाके करूंगी वैसे। गुजर गए सो गुजर गए, मुराद यकीन कौमों का मामला ख़त्म हुआ। तो माजी के गड़े मुर्दे उखाड़ने और तारीख के पहिए को पीछे पलटाने से क्या हासिल। माजी की बात दोहराने वाला तो ऐसा है कि कोई पिसे हुए आटे को फिर पिसे, यानी पिसे हुए आटे को दोबारा कोई पीसता है, या कटी लकड़ी को फिर से काटे। माजी का रोना रोने वालों के बारे में पिछलों का कहना है कि तुम मुर्दों को कब्रों से ना निकालो। मगर हमारी मुश्किल ये है कि हम हाल से आजिज़ हैं, यानी हाल में जो लोग हमारे पास होते हैं हम उनसे बेजार हैं और माजी से चिमटे रहते हैं। देख लीजिए, मतलब सामने मौजूद उस्ताद से आजिज़ हैं और माजी के बुजुर्गों के रोने रोते हैं, हाय कैसे नेक बुजुर्ग गुजर गए। याद रखिए, मौजूदा उस्ताद और माजी का उस्ताद, उसका यही फर्क होता है, और इसी में हमारे गम और खुशियां छुपे हुए हैं। फिर इसी तरह अपने खूबसूरत महल्लात को यूं ही छोड़कर माजी के बुसीदा किलों को रोते रहते हैं। आज एंटीक शॉप्स नहीं बन गई, कल एक जगह से गुजरे हम तो देखा तो बड़ी पुरानी बिल्डिंग थी, कहा ये कैसल है या कासल कह लीजिए, चले महल, मैंने कहा ये कासल है, दिल से सोचा उनको तो नहीं कहा। पाकिस्तान इंडिया के किसी पुराने इलाके में होता, हम कहते हैं है खंडर है, आप इसको कसल कहते हैं, लेकिन सिनेरियो है ना, जो बना लीजिए। हालांकि माजी को वापस लाने पर तो जिन्नो इंस जमा होकर भी कादिर नहीं हो सकते। लोग पीछे की तरफ नहीं देखते, हवा आगे को चलती है, पानी आगे को बहता है, कारवां आगे चलते हैं, ये सुन्नत हयात है, आप इसकी मुखालफत ना करें। तो क्या सीखा? माजी में नहीं जीना। क्यों? माजी चला गया, देखिए जो चली गई चीज़ तो चली गई, तो माजी के तलख वाकयात को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करें। रिवीजन करवाती हूँ, खुलासा है सारी बात का। माजी परस्ती छोड़ दीजिए। आप कहेंगे आज पता चला ये भी एक बुत है। जी, जो गया सो गया, माजी में जीना, उसके गमो अलमियों में जीना, ये बेवकूफ़ी और हमाकत है, वक्त ज़ाया होगा, गड़े मुर्दे नहीं उखेड़ने। माजी में रहना अपने आप को नाकाम करना है, और गया वक्त कभी हाथ नहीं आता, हवा आगे को चलती है, आप भी आगे चलिए, पानी आगे बहता है, आप भी आगे बहिए। और वो कहते हैं ना कि याद ए माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। बस लोग तो पीछे ही जीते हैं, करें क्या फिर? बस आप कहते हैं क्या ससुराल में जाकर मैके की यादें नहीं रखनी चाहिए, जवान होने पे बचपन की बातें याद नहीं रखनी चाहिए? पूछते हैं ना, तो आपको भी हक है, पूछिए, मैं खुद ही जवाब दे देती हूँ। माजी के साथ क्या करें, लिखिए, माजी से सबक हासिल कीजिए। माजी के तलख वाकयात में बसेरा करने की बजाय इनसे सबक लेकर आगे बढ़ जाना ही कामयाबी है। देखिए, माजी में की गई किसी भी गलती या भूल से सबक लेना ऐन अकलमंदी है। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। अगर कोई इंसान गलती ही ना करे, तो इसके सीखने की रफ्तार कम हो जाती है। तो जेम लिखिए, माजी की गलतियों को उस्ताद बना लीजिए और उनसे सबक लीजिए। करें क्या? माजी की बजाय मुस्तकबिल पर नजर रखिए, तो आप अक्लमंद होंगे। जिंदगी की किताब पढ़कर सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जिनकी नजर अगले बाब पर होती है, जैसे कि अब हमारी नजर अगली टिप पे है। तो रोशन मुस्तकबिल की जमानत माजी से निकलकर हाल में आ जाए। हमेशा आगे देखिए, अल्लाह ने आपको मुझे बड़ी कीमती जिंदगी दी है, इसको माजी में उलझकर खराब नहीं करना। और बस तो पिछले ही गुण गाते रहते हैं और आने मौजूदा लोगों की नाकदरी करते रहते हैं। और इसी तरह याद रखिए, याद के काबिल अगर बात है तो वो एक है, अल्लाह पर भरोसा रखिए। जी, दूसरी बात देखिए कि अल्लाह के दिए हुए इनामात और उसकी नवाजशात को याद रखिए जो माजी में मिली, ताकि नेमत की कदर हो। दिल में और आजी है कि अल्लाह पहले भी आपने इतना दिया, अब भी दे रहे, यानी माजी की नेमतों को भी ना भूलें, ये मुराद है। और इसी तरह से याद के काबिल रब की जात है। याद रखना है तो अच्छे अमाल को याद रखिए, ताकि उनको दोहराते रहें और नेकियां होती रहें। और एक बात याद रखिए, माजी के तजुर्बात को दोहराना नहीं है जिनकी वजह से नुकसान हुआ। अल्लाह के नबी की हदीस नोट कीजिएगा, अबू हुरैरा की रिवायत, अबू हुरैरा रावी हैं, इब्ने माजा में 3982 नंबर की रिवायत है, ला यल दिगु मोमिन मिन हिजरिन वाहिद, मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। तो याद रखिए तो अल्लाह को, जिक्र से तर रखिए तो अल्लाह को, सीखा यही है कि आगे चलना है, माजी को माजी में छोड़ दीजिए, वरना वो हाल भी खराब करता है और मुस्तकबिल भी। हमारा माजी सीखने की जगह है, घर बनाकर रहने की जगह नहीं। तो फिर अगली टिप लीजिए, और वो है आज पर नजर रखें। जी, आज, टुडे, अल आन, बस आपके मेरे हाथ में आज है। माजी चला गया, इख्तियार नहीं, मुस्तकबिल आया नहीं, पता नहीं आना भी है कि नहीं, तो क्या कीजिए? सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना करें। अल्लाह के नबी ने ये नसीहत की थी एक सहाबी को कि तेरी जिंदगी में सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना कर, और सो ऑन। बस आज और अभी पर नजर रखें, ना कल पर जो अच्छा बुरा गुजर चुका, और ना आइंदा पर जो भी आया ही नहीं। आपकी मेरी उम्र तो बस एक ही दिन है, और इसी दिन का सूरज आपको मिला है, इसीलिए दिल में सोचिए कि बस आज ही तो जीना है, गोया आज ही आप पैदा हुए हैं और आज ही मर जाएंगे। सोचिए अगर हमारी जिंदगी एक ही दिन की होती तो इस सूरत में क्या हम पीछे देखते? नहीं, आपकी जिंदगी माजी के सायों और तफक्कुरात और मुस्तकबिल की उम्मीदों और तवक्कुआत के बीच लटकी ना रहेगी। आप अपनी सारी तवज्जो, सारी सलाहियतें, सारी खलाकियत और जहानत सिर्फ आज पर लगा देंगे। आज की आपकी नमाज खुशू और खुदू वाली हो। लिखिए, ये करना है आज आपने, मैंने नमाज पढ़ें तो खुशू और खुदू से, अल्लाह तौफीक भी दे हमें, तिलावत करें तो तदब्बुर के साथ, और जानकारी हासिल करें तो तामुल के साथ, ये क्या होती है जी, मेहनत करना सीखे। जान लगानी है तो आज के लिए लगा दीजिए, जिक्र करें तो जी लगा कर करें, मामलात रखें तो तवाज़ुन के साथ निभाइए, अपने इस दिन के काम को बेहतरीन तरीके से तकसीम करें, यानी टाइम मैनेजमेंट आज के लिए आपसे बहुत अच्छी रखिए। और एक जुमला जो आपको बहुत फ़ायदा देगा, नोट कीजिए, इसके मिनटों को साल समझें और इसके सेकंडों को महीनों के बराबर ख्याल करें। जी, ये है आज की कदरदानी। खैर के बीज बोएं, एहसान करें, गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह को याद करें और सामान्य सफ़र तैयार करते रहें। इसी तौर पर आपका दिन फरखाओं या शादां गुजरेगा, खुश रहेंगे आप और इसी में अमन चैन हासिल होगा। आप अपनी रोज़ी रोज़गार, अपने बीवी बच्चों, घर, इल्म और मेयारे ज़िंदगी से खुश रहेंगे, यानी जिस पे जो भी फिट होता है। और ना बात समझ आए तो अल्लाह का ये बहुत ही प्यारा सा वादा है जो सूरत अल अराफ की आयत 144 में है, फ़खुस मा अतैतुका वकुम मिनश शाकिरीन, जो मैंने तुझे दिया इसे ले और शुक्र बजा लाने वालों में से हो जा। आपका ये दिन रंजो गम, घबराहट और लड़खड़ाहट और कीने कपट और बुग़ज़ और हसद से खाली गुजरे, ये भी लिखिए आज के लिए। दिल को हर गंदे जज्बे से खाली करना है। अपने दिल की तख्ती पर एक ही इबारत लिख लीजिए, आज आज और आज, टुडे टुडे और टुडे, अलान अलान अलान। जी, आज आपको अच्छी गर्म और लजीज रोटी मिल गई है तो कल की सर्द और रूखी सूखी रोटी या आइंदा की रोटी से आपको कोई नुकसान ना होगा। खा लिए ना, कल आ जाएगा तो कल रोटी भी आ जाएगी, फिक्र क्यों करते हैं, हम कल में जीते हैं और इसीलिए रोते हैं। जब आज ठंडा पानी और मीठा पानी पी लिया तो क्यों गम करें कि कल पता नहीं नमकीन ना मिले, खारी ना मिले, और आइंदा के गर्म सड़े पानी पर गम ना मनाइए। और अगर आज आप अज़म और मुसम्मम और फौलादी इरादों के मालिक हैं ना, यानी यू आर आयरन वूमेन कह लीजिए, आयरन नर्व्स है ना आपकी, तो अपने आप को इस नज़रिए का आदी बना दें। क्या एक जुमला खुद को कहिए जाकर, मैं बस आज ही जिंदा रहूंगी और रहूंगा। तब आप दिन का एक एक लम्हा अपने आप को संवारने और बनाने के लिए गुजारेंगे, अपनी सलाहियतों को बढ़ाने और काम को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त आप कहेंगे, आज के लिए मैं अपनी ज़ुबान की तहजीब करूंगी और करूंगा, यानी ज़ुबान को मुहज़्ज़ब अंदाज़ से इस्तेमाल करूंगा, कोई फुहश बात, गाली और गीबत नहीं करूंगा। आज के लिए अपना घर ऑफिस मुरतब करूंगा, ना कोई बेतरतीबी होगी मेरे घर में और ऑफिस में, ना बदनज़मी होगी, बल्कि निज़ाम और तरतीब होगा। यानी अपने आज की कदर की, जब कहते हैं एक ही तो दिन ऐसे ही गुजार लें और गंदगी तो हमें दिखती भी नहीं, हम कहते हैं छोड़ो ना, ये कोई गंद है, ये तो कपड़े हैं, ये कोई गंद है, बस ये तो मट्टी ही मट्टी है। तो आज के लिए मैं अपने जिस्म की सफाई सुथराई करूंगी, जाहिर की तारीफों के साथ वज़ह कता पर तवज्जो दूंगी, अपनी चाल हरकत और बातचीत में तवाज़ुन पैदा करूंगी। आज अपने रब की इताअत करूंगा, नमाज सही ढंग से पढ़ूंगा, कुरान पाक की तिलावत करूंगा, किताबें देखूंगा, मुतालिया करूंगा। चूंकि सिर्फ आज ही तो जीना है, इसलिए अपने दिल में फजाइल का पौधा लगाऊंगा। शर और मकरूर और हसद, गरूर, बदसनी और बुराइयों की तमाम जड़ें काट कर फेंक दूंगा। फक्त आज ही जिंदगी गुजारूंगा, इसीलिए दूसरों को फायदा पहुंचाऊंगा और इनके साथ एहसान और सलूक करूंगा। मरीज की आदत करूंगा आज अगर मुमकिन हुआ, खुद से नियत कीजिए, जनाजे के साथ चलूंगा, गुम करदा राह की रहनुमाई करूंगा, भूखे को खाना खिलाऊंगा, मुसीबत ज़दा की तकलीफ दूर करूंगा, मजलूम के साथ खड़ा होऊंगा और कमजोर के लिए सिफारिश करूंगा और गमजदा की गम गुसारी करूंगा। आलिम का इकराम करूंगा, यानी इल्म वाले की इज्जत करूंगा और कमजोर पर रहम करूंगा और बड़ों की इज्जत करूंगा। आज ही मुझे रहना है, इसलिए अपने ए माजी, यानी अपने माजी को अब खुदा हाफिज कह दें, ए माजी जा अपने सूरज की तरह डूब जा, यानी जब सूरज भी डूब गया यस्टरडे का तो तू भी डूब जा। मैं हरगिज हरगिज तुझसे ना रोऊंगा, मैं हरगिज तुझ पर ना रोऊंगा, मैं तुझे पल भर के लिए भी याद ना करूंगा, क्योंकि तू जा चुका, हमसे दूर हो गया, अब कभी वापस ना आएगा। और ए मुस्तकबिल, तू अभी आलिम गैब में है। मैं ख्वाबो ख्याल का अपने आप को आदीना बनाऊंगा। जो चीज़ अभी पैदा नहीं हुई, इसके पीछे क्यों पड़ूं? देखे ना कोई कहे, वो बच्चा जब भी पैदा ही नहीं हुआ, गम करे हाय वो बीमार ना हो जाए। भाई पैदा तो होने दीजिए, उसकी बीमारियों के भी गम कर लेंगे। तो ये मुराद है, क्योंकि कल तो कोई चीज़ ही नहीं, इसका भी वजूद ही नहीं। ए इंसान, आज का दिन ही खुशबख्ती की लुगत यानी डिक्शनरी में सबसे अच्छा कलमा है। इसका ख्याल करने वाला ही जिंदगी की रानाइयों और शादमानियों से बहरावर हो सकता है। तो फिर क्या सीखा, दोहराई कर ले। आज पर नजर रखें, आज आज सारी उम्मीदें आज से, सारी तवक्कुआत आज से। अपने आप को कहिए कि मैं सिर्फ आज के लिए पैदा हुई हूं और आज ही मर जाऊंगी। और क्या कीजिए, नई सोच लीजिए, एक नया आज पैदा कीजिए। फखुस मातई तो कब अकुम मिन शाकिरीन, अल्लाह की जो नेमतें आज हैं उनको लेते जाइए और शुक्र कीजिए। जो नहीं मिली देखी जाएंगी, मिल जाएंगी। जो पहले मिल गई थी अब नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। तो आज के नेमत भरे दिन पर शुक्र कीजिए। दिल को हर गंदी चीज़ से पाक कीजिए। प्रे कीजिए, फेथ पे पुख्तगी रखिए और अल्लाह के रास्ते में जमे रहिए। तीन चीज़ें आपकी ज़िंदगी का खुलासा बन जाए तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिर खुद को कहिए, मैं आज ही ज़िंदा रहूँगी। याद रखिए, माजी की बहुत सारी तलखियाँ हमारी ज़िंदगी में इसीलिए होती हैं, पीछे ही जीते हैं। और ख़ास तौर पे शादी के बाद मैके को यादगार करके। कुछ लोगों का तो मसला ही है कि वो ज़िंदगी के सफ़र में सिर्फ बैक मिरर पे देखते हैं, मेरे ही साथ क्यों हुआ, आखिर क्यों। और नऊज़ बिल्ला ऐसा भी दुख देने वाला जुमला बोलते हैं कि अल्लाह ने मेरे साथ ज़्यादतियाँ क्यों की, मेरे ही साथ सारे गम क्यों लगे हैं। तो याद रखिए, माजी की कब्र खोदिए और उसमें दफना दीजिए। गालिबन इब्ने जोजी का कुछ ऐसा कॉल मुझे याद ऐसी हादसे से आ गया कि कब्र खोदिए माजी की, कल की कब्र खोदिए और उसको दफन कर दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मुस्तकबिल की लंबी उम्मीदें और तवक्कुआत भी ख़त्म हो जाएंगी। और इस पे हदीस जो आपसे शेयर की गई अब्दुल्ला बिन उमर से है, सही बुखारी 6416। अल्लाह के नबी ने उनका शाना पकड़ा और फरमाया, कुन फि दुनिया का नक गरीब नो आबिर सबील, दुनिया में इस तरह रहो जैसे तुम मुसाफिर हो या राह चलने वाले, यानी ट्रांजिट लाउंज है ये दुनिया। इब्ने उमर फरमाया करते थे, शाम हो जाए तो सुबह के मुंतजिर न रहो और सुबह के वक्त शाम के मुंतजिर न रहो। अपनी सेहत को मरज से पहले गनीमत जानो और जिंदगी को मौत से पहले। तो जरा सी ऊंची आवाज में खुद को सुनवाइएगा, मैं बस आज ही जिंदा रहूंगी। किस काम के साथ, दो कामों को लिख लीजिए, आज मैंने दो काम जरूर करने हैं। नंबर एक, अपनी ज़ात की इसलाह करनी है, यानी इनफरादी मुहासबा, कह लीजिए कि पर्सनल ग्रूमिंग। और एक माहौल की इसलाह, यानी एटमॉस्फेयर को अच्छा करना है। ज़ाती इसलाह का एजेंडा क्या है? पहली बात, याद इलाही की कसरत करूँगी, गुनाहों से तौबा करूँगी, ज़ुबान की हिफाजत करूँगी, जिस्मानी सफाई का ख्याल रखूँगी, ज़ाहरी वक्कार के साथ जीऊँगी। लेट डाउन नहीं करना खुद को, किसी के आगे छोटे नहीं बनना। और माहौल की इस्लाह मैं कैसे करूँगी? बिखरे काम संवारूंगी, अपने घर या ऑफिस को तरतीब दूंगी, दूसरों को खैर दूंगी, माहौल को बेहतर बनाऊंगी, सलाहियतों का मुस्बत इस्तेमाल करूंगी। और सबसे बड़ी बात, तीसरा काम, मामलात की इस्लाह करूंगी। किससे किससे मामलात? लोगों से हुस्ने सलूक, मरीजों की आदत, जनाजे में शिरकत, गुमराह की रहनुमाई करूंगी, मजलूम की दादरसी करूंगी, कमज़ोरों पे रहम करूंगी और गमज़दा की गमगुसारी करूंगी। आज से आगाज़ कीजिए कि हुकुकुल इबाद को आसान तरीके से अदा करके खालिक की रज़ा हासिल करनी है। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक दे। तो नुक्ता क्या है अमल का? सारी तवज्जो आज पे। कैसे? सलाहियतें अपनी आज की देखिए, मैक्सिमम यूज़ कीजिए, जहानत देखिए, खलाकियत देखिए, आज पे लगाइए। फिर इसके बाद आप देखिए कि इसके असरात क्या दिखेंगे, कि वाकई आपने ये टिप ले ली और इससे फ़ायदा हुआ। आपकी नमाज खुशुखुदू वाली होगी, तिलावत तदब्बुर वाली हो जाएगी, जिक्र शऊर के साथ होगा और मामलात में तवाजुन आ जाएगा। और वो एक शेर जलामा इकबाल कह गए, वो कल के गमो ऐश पे कुछ हक नहीं रखता, जो आज खुद अफरोज और जिगर सोज नहीं है। यही मेरा आपको पैगाम है, आज कुछ कर लीजिए, वरना कल तो कभी देखा भी नहीं। खुद को ऑर्गेनाइज कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, दिन के मिनटों को साल और सेकंडों को महीने समझिए और काम करने के अंदाज को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले आइए। अल्लाह आपसे मुझसे राजी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए तीसरी सीढ़ी पे चढ़ते हैं। जमाने के एतबार से वैसे पांचवी टिप दे रही हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट है मुस्तकबिल को आने दीजिए, वेट फॉर फ्यूचर। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अता अम्रुल्लाहि वला तस्ताजिलू, सूरत नहल की पहली आयत है। अल्लाह का हुक्म होकर रहेगा, इसकी जल्दी न मचाओ। मुस्तकबिल के बारे में अंदाजे न लगाएं। वज़ह हमल अपने वक्त पर ही होगा, यानी बेबी डिलीवर अपने वक्त पे होगा। जल्दी क्यों जाते हैं? आज देखिए जल्दबाजी में कितने आर्टिफिशियल तरीके निकल आए। फल को पकने से पहले क्यों तोड़ना चाहते हैं? कल एक मफकूद शहर, ये जुमला नोट कीजिए, मफकूद कहते हैं जो भी है ही नहीं, फकदा, जिसका भी वजूद नहीं है, ना कोई मज़ा है ना रंग, तो हम इसके मसाइब आरजुओं और तवक्कुआत और इम्कानी हवादिस व वाकयात के बारे में सोच सोच कर अपने आप को हलकान क्यों करें, जबकि अभी हमें मालूम ही नहीं कि वो आएगा भी कि नहीं और खुशकुन होगा या नहीं। अहम यह है कि वो अभी आलमे गैब में है, आलमे वजूद में नहीं आया, तो हम पहले ही से इसको लाने की या पाने की कोशिश क्यों करें, जबकि मुमकिन है कि हम इस तक पहुंचे या ना पहुंचे। मुस्तकबिल के बारे में जहनी लड़ाई लड़ना, गैब की किताब खोलकर इसमें मुतवक्के परेशानियों पर कराहना शरण इसलिए नापसंदीदा है कि वो ख्वाहिशात का लामतना ही सिलसिला है, और अकलन इसलिए मसमूम है कि वो साए से कुश्ती लड़ना है। बहुत से लोग दुनिया के मुस्तकबिल को तारीख, भूख, प्यास, बीमारियों और मुसीबतों से भरा समझते हैं। याद रखिए ये सब शैतानी वसवसे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा 268 में, शैतान तुम्हें फ़क्र का खौफ दिलाता है और बुराई का हुक्म देता है, और अल्लाह ताला अपनी मग़फ़रत और फजल का वादा करता है। सुभान अल्लाह, कितने लोग हैं जो ये सोच कर रोते हैं कि कल वो भूखे रहेंगे, एक साल बाद बीमार हो जाएंगे और 100 साल बाद दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। हालांकि जब उम्र दूसरे के इख्तियार में है तो फिर वो अनहोनी के बारे में क्यों सोचे? सोचिए ना, जबकि नहीं मालूम कि कब मरेगा, तो गैर मौजूद चीज के सिलसिले में मुस्तरब क्यों रहें? बाज लोग मौत के अंदेशों में नहीं आजकल खौफजदा, कोरोना वायरस का अंदेशा कितने लोगों को डिप्रेशन में ले जा चुका है कि हम मर ही ना जाए। भाई जब आपके मेरे इख्तियार में नहीं तो फिर फिक्रमंद करते क्यों खुद को? कल को आने दीजिए, इसकी खबरों और जलगारों के सिलसिले में पूछताछ मत कीजिए। आपको आज से फुर्सत कहाँ? बड़े ताज्जुब की बात है, लोग कल के तफक्कुरात को नकद ले रहे हैं। कल दिन इसे किस दिन इसे अदा करेंगे? इस दिन जिसका सूरज भी अभी नहीं निकला, तो लिहाजा लंबी उम्मीदों से दूर रहिए। क्या सीखा? कल का फिक्र छोड़ दीजिए, आज में रहिए, मुस्तकबिल आने दीजिए, जब आएगा तो होगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको। अमूमन हमारे अंदेशे और हुजन और गम और फियर्स आगे होते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनकी शादियां कहाँ होंगी, हाय घर छोटा है, हाय मियाँ की जॉब ना चली जाए, हाय कोरोना वायरस के लॉकडाउन में बिजनेस ना ठप हो जाए। आने दीजिए, लेट इट कम, वेलकम कीजिए आने को। जब आएगा देखी जाएगी, हम होंगे तो कुछ कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो देखिए जैसे हम फितरत के असूल में फलों को वक्त से पहले तोड़ेंगे तो खट्टे होंगे ना, बच्चे को वक्त से पहले ले आएंगे तो वो एक एबनॉर्मल बेबी होगा, इसी तरह वो कल जो भी आया ही नहीं उसको सोचकर आप और मैं क्यों परेशान होते हैं? मत सोचिए ज़्यादा, मुस्तकबिल के बारे में अंदाजे ना लगाएं। आप देखिए तीन खदशे हमेशा रहते हैं मुस्तकबिल के बारे में। पहला खदशा क्या होता है? क्या मालूम वो अच्छा होगा कि बुरा। फिर दूसरा खदशा होता है क्या मालूम वो होगा भी कि नहीं। और तीसरा ये क्या मालूम हम होंगे भी कि नहीं। तो बस फिर यहाँ अल्लाह का हुक्म सुन लीजिए, अता अमरुल्लाह ही फला तस्ताजिलू। देखिए कितना अल्लाह ने एहसान किया आपके मेरे ऊपर, कल को छुपा कर, कल जो होगा। मैं सब देखिए किसी के बच्चा पैदा हो, आप देखते हैं कि वो बच्चा जवान हुआ, बड़ा बड़ा एन 20 साल की उम्र में उसकी शादी हुई, घर से निकले, हादसा हुआ, हादसे में दूल्हा फौत हो गया। मिसाल देते हैं, वो सिनेरियो, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो। अब अकलौता बेटा और ऐसी हादसे का शिकार हुआ, हाय मेरे साथ क्यों हुआ, रोए धोए, एक दिन दो दिन चार दिन सब्र आ जाएगा, अल्लाह दिल पे फाहा भी रख देता है जब जख्म आते हैं या तकलीफें आती हैं। बिलफर्ज बच्चा पैदा हुआ उसी दिन पता चल जाती है ये बात, तो क्या वो 22 साल माँ उस बच्चे को एंजॉय करती? अब क्या करे, चला गया ना 22 साल, एंजॉय तो किया, अल्लाह ने दे के लिया ना, लोगों को तो दिया भी नहीं। देखिए गम खुशियों में ढलते हैं, इंशाल्लाह आगे आगे चलते जाएं, ज़रा साथ साथ होगा। आपको प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी, मेरे अपने हाथ में होता है खुश रहना या नहीं। छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आपको कोई नुकसान पहुँचता है तो किसी को फ़ायदा भी तो होता है ना। बस आपकी कोई चीज़ चोरी हुई तो किसी को मिल भी तो गई ना। चीज़ को कैसे ले लें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो लिहाजा मतलूब यह है कि अपनी सलाहियतों को ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करें। और शैतान का जो ये वादा है ना कि शैतान यईदुकुमुल फ़क्र व यामुरुकुमुल फ़हशाई, इस पे नज़र न रखिए। जो शैतान के वादों पे नज़र रखते हैं वो हमेशा मुस्तकबिल के बारे में परेशान होते हैं, फ़राइज़ भी नहीं अदा करते, ज़कात तक नहीं देते और पैसे बचाते हैं कि आगे जाके काम आएंगे, और आगा नहीं आता और आगे जाने का वक्त आता है। तो मुफलसी का डर निकाल दीजिए, जो होगा देखी जाएगी। वसाइल की कमी को पीछे कर दीजिए। हज़रत उमर फारूक फरमाया करते थे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम लोग अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल करो जैसे तवक्कुल का हक है, तो तुम्हें ऐसे रिस्क मिलेगा जैसे परिंदों को रिस्क मिलता है। वो सुबह को भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भरे हुए, यानी आसूदा हाल वापस आते हैं। ये तिरमिजी की रिवायत है 2344। तो जिसका आज उसी का कल। ताज्जुब है कि लोग उधार को नकद ले रहे हैं जबकि रिस्क का वादा अल्लाह ने रखा है। तो आने वाले दिन के गम में आज की खुशियों की ना कदरी ना कीजिए, आने वाली बीमारी पर आज की सेहत की ना कदरी ना कीजिए। जब अपनी उम्र आपके अपने इख्तियार में नहीं, तो चाहे 100 साल बाद कुछ हो या 2 दिन बाद हो जाए, जो होगा देखी जाएगी। ऐसे बेनियाज बनिए। और वही बात है कि जो इब्राहिम लंकन ने कही थी कि लीव नथिंग फॉर टुमारो विच कैन बी डन टुडे, कोई चीज़ कल पे ना डालिए जो आज कर सकें। तो आज का काम कल पे ना डालिए, अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी होगा। तो अब देखिए, हमने माजी भी पढ़ लिया, हाल भी और मुस्तकबिल भी। अब एक और टिप जो मेरे ख्याल आप में से कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा देगी, वो क्या है, बेजा तनकीद का सामना कैसे करें। हमारी बहुत सारी तकलीफ़ें, गम और स्पेशली बैड फीलिंग्स लोगों की तनकीद की वजह से होती हैं कि लोग मेरे पे ये करते वो करते। तो आइए ज़रा इस पे भी कुछ टिप्स ले लेते हैं कि लोगों की तनकीद आपकी मेरी खुशियों और गमों पर कैसे असरअंदाज होती है। कुछ बेवकूफ़ तो अल्लाह सुबहाना ताला को भी बुरा भला कह देते हैं, जो खालिक व मालिक और पालनहार है, जो सबको रोज़ी देता है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर हम और आप जो ख़ताकार हैं, गलतियाँ करते हैं और करते रहते हैं, उनकी क्या हैसियत। हमें तो लोगों की बेजा बुराई और तनकीद का सामना करना ही पड़ेगा। यदि खुद को कहें कि मेरे में तो इतनी कमी है कि लोग तनकीद ना करेंगे तो और क्या करेंगे। मैं अपने पर लेती हूँ, मेरे पढ़ाने के अंदाज़ में क्या है, इतनी जल्दी बोलती हूँ, तनकीद नहीं करेंगे और क्या करेंगे। और कभी कभी इतना ऐसा बोलती हूँ कि लोग बेचारे सो ही जाते हैं, तो फिर तनकीद तो होगी, ये सोच रखी है। हमें बर्बाद करने के मंसूबे बनेंगे, जानबूझकर इहानत की जाएगी। जब तक आप दे रहे हैं, बना रहे हैं, मुअस्सिर हैं, तरक्की कर रहे हैं, तब तक लोग आप पर तनकीद करने से नहीं चूकेंगे, सिवाय इसके कि आप ज़मीन में समा जाएं या आसमान पर चढ़ जाएं और इनकी नज़रों से दूर हो जाएं। जब तक आप इनके बीच हैं, आपको अज़ियत पहुंचती रहेगी, आंसू निकलेंगे, नींद उड़ेगी। जो ज़मीन पे बैठा हुआ है वो नहीं गिरता, गिरते हैं शख्स सवार ही मैदाने जंग में। लोग आप पर इसीलिए तो नाराज़ होते हैं ना कि आप इल्म, सलाहियत, अखलाक और माल में उनसे बढ़ गए हैं, वो आपको माफ़ कर ही नहीं सकते। जब तक आपकी सलाहियतें ख़त्म न हो जाएं और अल्लाह की नेमतें आपसे छीन न जाएं, आप सारी अच्छाइयां और खूबियों से तही दामन न हो जाएं, गंदे और कुन जहन, बेकार और सिफर होकर न रह जाएं, यही वो चाहते हैं। लिहाजा आपको इनकी बेजा तनकीद, नारवा बातों और तहकीर को बर्दाश्त करना होगा। क्या करें, ओहद पहाड़ की तरह जम जाएं, ऐसी चट्टान बन जाएं जिस पर ओले बरसते हैं, जब ओले पड़ते हैं ना तो टूट कर बिखर जाते हैं, चट्टान अपनी जगह जमी रहती है। अगर आपने लोगों की तनकीद को अहमियत दे दी तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और उनकी मुँह मांगी मुराद पूरी हो जाएगी। तो बेहतर तौर पर दरगुजर कीजिए, इनसे एराज कीजिए और इनकी बातों में ना आइए। इनकी फजूल बुराई से, यानी आप अक्सर फिर दूसरों की बुराई करने लगते हैं ना, वो कर रहे हैं ना आपकी, यानी वो आपकी फजूल बुराई करते हैं ना, तो आपका दर्जा बुलंद होगा। आप जितना भी आपका वजन होगा उतना ही हंगामा और शोर व शगफ आपके खिलाफ होगा। आप किस किस के मुंह को बंद करेंगे, लेकिन अगर इनसे सरफे नजर करें, लुक ओवर जस्ट पीछे कर दीजिए, इनके हाल पर छोड़ देंगे, तो आप इनकी तनकीदों से बच सकते हैं। और कुरान पाक सूरत आल इमरान 119 में मुनाफिकीन के बारे में कहा गया था, आप कह दीजिए अपने गैज़ो गज़ब में मर जाओ। और गैर मुस्लिमों को भी कहा गया जो अल्लाह के नबी की तरक्की को देख नहीं सकते थे। यही नहीं, बल्कि आप फजाइल व महासिन में और इजाफा करके अपनी खूबियों को दूर करके इनकी जुबानों में ताला डाल सकते हैं। यानी जो तनकीद करते हैं ना, आप उनको और अच्छा बन के दिखाएं कि लोग, फिर अब मैं अपनी गलत चीज़ें भी दूर करके दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, अगर आप ये चाहेंगे कि दुनिया के नज़दीक तमाम अयूब से बरी हो जाएं, यानी कोई ऐब ना लगे और सभी लोगों में आप मकबूल हो जाएं, तो ये नामुमकिन की आरजू है और दूर की उम्मीद है। तो बात समझ गए हैं, बहुत ही आसान बात थी, अल्लाह समझा दे तो बहुत ही आसानी है। तनकीद के लिए तैयार है। देखिए, हमने इसमें जो सीखा है ना, जो अच्छा काम करेगा उस पर तनकीद होगी, और चंद जुमले मैं भी बोल दूँ, पब्लिक प्रॉपर्टी बनेंगे आप। लोग आपको दूरबीने लगा लगा कर चेक करेंगे अंदर से बाहर से, और दूसरों की बात करें ना, वो देखे दुनियादार, कहते हैं वो तो दुनियादार है ना, उनको बेचारों को तो पता ही, वो तो इतने भोले हैं, ऐसे ही शमीज पहन के बाहर आ जाती है, पता ही नहीं चलता, ऊपर शर्ट भी पहननी थी, बोली है ना। और दीनदार, जरा देखिए क्या करते, स्कार्फ में चार बाल दिख रहे थे, ये सोच होती है। तो याद रखिए, कुछ लोगों की जॉब है कि वो आपका दिल तोड़े, बिलीव मी। लोग आपको दुखी करेंगे, आपने नहीं होना, तो बेजा तनकीद का सामना करिए, खुश हो, मुहासबा कीजिए इसके बदले में। हर अच्छा काम करने वाले की तनकीद होती है। जो सुस्त होते हैं, बैठे रहते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता, जो काम करते हैं उन्हीं को तो लोग कहते हैं। इसीलिए तो मैं अक्सर एक जुमला बड़े प्यार से बोलती हूँ साथियों के लिए जो काम करते हैं, कि आपकी तरह आपकी गलतियां भी बड़ी प्यारी हैं मुझे। काम किया तभी तो गलत किया ना, सारा गलत कर दें मुझे कोई परवाह नहीं, हाथ जान के नहीं करना, केयरलेस नहीं होना। वही बात है कि पूरी कोशिश कीजिए, फिर मामला तल्ला पे डाल दीजिए, और आपको कुछ करना है तो तनकीद तो सहनी। और मैं अक्सर जुमला बोलती, कल भी शायद बोला था सेशन में, कि अगर आपने कोई बड़ा काम करना है ना, तो लोगों की तनकीद और तारीफ से बेन्याज हो जाए। देखिए, दो हस्तियां, एक अल्लाह की ज़ात जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, लोग उसको भी बुरा कहते हैं, और इंसानों में सबसे ऊपर मुकाम है अंबिया कराम का, जो सारी जिंदगी लोगों के लिए तड़प गए, जब उन पे इल्जाम लगे, तनकीद हुई, जो खैर ख्वाह थे, जो अजर नहीं मांगते, पैसा नहीं मांगते, इन अजरी या इल्ला अल्लाह, तो फिर आपके मेरे ऊपर तो तनकीद बहुत होनी चाहिए, हम तो इंसान हैं, गलतियों के पोटले हैं। तो लिहाजा मुनकरीन और मुशरिकीन की तनकीद के जवाब में जो अल्लाह ने कहा था, आपने तो नहीं कहना किसी को, लेकिन सोच लीजिए कि जो गुस्सा करेगा वो तो सबसे बड़ा अपना दुश्मन है। देखिए, हमारे गुस्से के होते में किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो खुद ही हमारा है। और दूसरी बात है, जो जमीन पे बैठा है वो कैसे गिरेगा, जो कुछ कर ही नहीं रहा उसको लोग क्यों बुरा भला कहेंगे। तनकीद आप पे होगी जब आप तरक्की करते हैं, बड़े बनते हैं, और याद रखिए जलसी भी होती है, इसलिए दुआएं मांगनी चाहिए, सुबह शाम की दुआएं पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी नेमतों को नजर नहीं लगेगी अगर आप उनकी हिफाजत अजकार और औरात से करेंगे। कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए, लोगों के हसद से ऊपर निकलिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और तनकीद से नहीं घबराना। गिरते हैं शख्स सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो घुटनों के बल चलने से बेहतर है तनकीद बर्दाश्त करके ऊपर से ऊपर आए, लोगों की बातों से ऊपर अपने आप करें। देखिए ना, बॉल गिरती है 10 फुट पे, तो आप खुद को 11 फुट पे ले आइए, बस तनकीद से ऊपर हो जाइए। ट्राई योर बेस्ट, और एराज कीजिए, लोगों को ज़्यादा एक्सपोज ना कीजिए। हम अपनी चीज़ें दिखाते भी बड़ी हैं दिखा दिखा के, तो फिर होता क्या है, हम लोगों की बातों से रो रहे हैं। और सेंसिटिव लोग कभी दीन के काम नहीं कर सकते, अपने आंसू खुद पोछिए, मजबूत पहाड़ की तरह जमे, ऐसी चट्टान बने जिस पर ओले भी टूट कर बिखर जाए, मगर चट्टान अपनी जगह ना छोड़े और लोगों की बातों को छोड़ दें। लोगों का डर अल्लाह की दात का शौक छीन लेता है। तो आज शायद आपको एक बहुत बड़ा इंसेंटिव मिल गया हो कि अच्छा, आज तक मैं इसलिए बीमार और दुखी परेशान थी, लोगों का गम करती थी, लोग क्या कहेंगे। कई लोगों के सर में दर्द शुरू हो जाती है, आपको पता है, इस वजह से कि वो लोगों का गम बहुत मनाते हैं। तो अमल की बातें फिर वही हैं कि तनकीद का मुकाबला अपनी सलाहियतों को बढ़ा कर करेंगे इंशाल्लाह, खामियों को पहचान कर दूर करने की कोशिश करेंगे और लोगों को उनके हाल पे छोड़ दें। क्योंकि लिखिए एम पॉसिबल टारगेट, क्या आप सारी दुनिया को खुश नहीं कर सकते, रियलाइज इट, एक्सेप्ट दिस, बस उसके बाद फिर सारे काम आसान होंगे। और वो वाक्य तो आपने सुना ही होगा कि बाप बेटा था और एक गधा था। बाप ने बेटे से कहा तुम सवार हो जाओ, तो लोगों ने बेटे को बातें शुरू कर दी, हाय बूढ़ा बाप चल रहा है। बेटे ने उठाकर बाप को चढ़ा दिया, तो आगे गए तो लोगों ने बाप को बुरा बोला, हाय मासूम बच्चा पैदल है, और उसने उसको उतार दिया, अब क्या करें। दोनों बैठ गए तो लोगों ने कहा हाय गधा बेचारा, देखो दो सवार हो गए इसके कंधों पे, अब क्या समझ आई। दोनों उतर के साथ गधे को चलाने लग गए, आगे क्या हुआ गया, लोगों ने क्या कहा आप समझ गए होंगे जी। ये रिलैक्सिंग बातें हमारे सेशन के एंड का एक नुक्ता आगाज है। कहने लगे देखो ना बेवकूफ हैं, गधा भी पास है तो फिर भी पैदल चल रहे हैं। फिर बाप बेटे ने क्या किया होगा वही आप भी करेंगे। अल्लाह हू अकबर, उस गधे को पकड़ कर कंधों पर सवार कर लिया, तो फिर जो लोगों ने किया वो आप भी जानते हैं। तो जिंदगी को जिए इससे पहले कि जिंदगी आपको जी जाए, बिलीव मी, जीना सीखें, यकीन करें जीना एक आर्ट है। टॉपिक इस बुक के साथ ना जुड़ा होता ना, और ऐसे बहुत सारे सेशंस हैं, इसलिए मुझे अफसोस नहीं, मुझे इस बुक के पढ़ाने की इतनी खुशी है। आपको पता नहीं शायद 8 साल पहले भी पढ़ाई थी और उसकी भी रिकॉर्डिंग्स पूरी नहीं है, थोड़ी रखी हुई। आज सुबह मैं शुक्र से कह लीजिए कि तर हो गई, कि अल्लाह उस दिन जब बुक पढ़ा रही थी तो किताब थी, पीडीएफ भी नहीं होते थे सामने, और आज इतनी खूबसूरत तैयारियां, इतने प्यारे साथियों के साथ ये सफ़र तू मुझसे करा रहा है। तो अल्लाह हर आने वाला दिन पहले से ऐसे ही अच्छा रख जैसे अब हर दिन पहले से खूबसूरत है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहद अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।